दोस्तों वीजा की दुनिया से खबर यह है कि 2021 से यानी अगले साल से टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स को जो पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम होती है यानी कि पढ़ाई के बाद जो वीजा मिलता है उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों को और रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले बच्चों को रीजनल ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए दूसरे टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा की सुविधा मिलेगी। यानी एक बार टीजीवी मिलने के बाद भी वे दूसरे टीजीवी के लिए यानी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये पूरी जानकारी है और इसके क्या मायने या फायदे नुकसान हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तन्वी दत्त हैं। मेलबर्न स्थित जीएनटी माइग्रेशन की तन्वी दत्त से हमने जानना चाहा कि किसे इस घोषणा का फायदा हो सकता है। तन्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है SBS हिंदी पर।
थैंक यू विवेक जी।
तो तन्वी, हम सुन रहे हैं कि 2021 से टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स को सेकंड टीजीवी भी मिल सकती है, इसका मतलब क्या है?
ये एक्चुअली जब पिछले साल जब नवंबर में इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए थे, 491 वीजा आया था, उसके दौरान ही इन्होंने ये वीजा के बारे में अनाउंसमेंट किया था। इसके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 साल रीजनल एरिया में पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट होने के बाद जब उनको TR मिलेगी तो उसके बाद देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, इन्होंने 2 कैटेगरीज में रीजनल एरिया को डिवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन स्टूडेंट्स को एक्सटेंडेड 1 साल या एक्सटेंडेड 2 साल और TR के मिल सकते हैं, जिसको ये सेकंड टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा कहेंगे उस टाइम पे।
ओके,
तो उसका मेजर बट एक बस सिर्फ ये मेन चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन इस चीज पे होगी जो बैचलर और हायर एजुकेशन वाले होंगे। तो ये ट्रेड कोर्सेज अगर हम 2 साल वहाँ पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा।
मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये पहले से ही बता दिया गया है कि ग्रेजुएशन और अबव
पोस्ट ग्रेजुएशन, बिल्कुल, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रीम होती है TR की, उन्हीं जो कि बैचलर और अबव की क्वालिफिकेशन के बाद मिलती है उन लोगों के लिए ही ये जो है फायदे में रहेगा।
तो और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, इस बारे में कुछ पता है?
इसकी देखिए, यूजुअली इन्होंने जब ये क्या करते हैं कि लेजिस्लेशन निकालते हैं तो इसकी अनाउंसमेंट वेल इन एडवांस कर देते हैं, तो इन्होंने इस हिसाब से इन्होंने लास्ट ईयर इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी और उस टाइम पे इन्होंने हमें बोला था कि मोस्ट लाइकली नवंबर 2021 में ये है जो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखें तो 2 साल की पढ़ाई स्टूडेंट्स की उसके दौरान कंप्लीट हो जानी थी जब से ये अनाउंस हुआ था टू द पॉइंट जब ये इम्प्लीमेंट होना है। बट अगर ये हो सकता है कि लाइकलीहुड अगर इन्होंने जिस हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं तो जब जुलाई के चेंजेस आए तो हो सकता है कि शायद थोड़ा पहले इम्प्लीमेंट करके जुलाई में भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, बट अगर हम लोग पिछली अनाउंसमेंट के हिसाब से बात करें तो चांसेस आर कि नवंबर में इम्प्लीमेंट होगा।
तो जब इम्प्लीमेंट होगा उस दिन जिसके 2 साल हो गए होंगे या उस दिन से जो पढ़ाई शुरू करेगा?
नहीं, उस टाइम पे जिनके 2 साल हो चुके होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे, बट इसके अंदर इन्होंने 2 कैटेगरीज में विवेक जी डिवाइड किया है। इन्होंने एक्चुअली रीजनल एरियाज को एक तो मेजर रीजनल सेंटर्स बना दिया है और एक जो रिमोट रीजनल एरियाज बना दिया। तो मेजर रीजनल सेंटर्स के अंदर जैसे सिटीज कौन कौन सी आ जाती हैं, पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यूकासल, लेक मैक्वेरी, वुलनगोंग, इलावारा, जिलोंग एंड होबार्ट। तो इन एरियाज के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं या रहे हैं वो Category 2 के अंदर फॉल करेंगे जिनको एडिशनल 1 साल मिलेगा, और उसके अलावा जितने भी रीजनल एरियाज हैं जो सिटीज की मैंने बात करी है और मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन जो कि मेट्रो के अंदर आते हैं उनको छोड़ के दूसरे एरियाज में जैसे कि डार्विन हो गया या फिर अगर हम टेस्मेनिया के अंदर और रीजनल कैंपसेस की बात करते हैं जो होबार्ट में नहीं फॉल करते हैं या फिर अगर हम लोग इसी हिसाब से और जो रीजनल एरियाज की बात करते हैं उन अगर हम सेंटर्स की बात करेंगे तो उन लोगों को एक्सटेंडेड 2 ईयर्स मिलेंगे जो कैटेगरी दूसरी के अंदर फॉल करेंगे। बट इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया स्टूडेंट्स को मीट करने पड़ेंगे और वो क्राइटेरिया ये होंगे कि उन लोगों को पहली बात तो पढ़ाई करते वक्त 2 साल जो है उनको रीजनल में रहना भी पड़ेगा और उनका रीजनल में ही पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे उनकी मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो पर उसका जो कैंपस है वो रीजनल एरिया में होना चाहिए, जैसे विक्टोरिया में बेंडिगो में कैंपस है, सिमिलरली और बहुत सारी यूनिवर्सिटी सिडनी में है जिनके कैंपस रीजनल एरियाज में फॉल करते हैं, जैसे वुलनगोंग वगैरह। तो वो उसके हिसाब से उनको वो 1 साल या 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। बट इसका एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो सुनने में आई है जो कि इम्प्लीमेंट होनी है वो ये होगी कि ये तभी मिल पाएगा कि स्टूडेंट्स जब उस टाइम पे भी रीजनल एरिया में रहेंगे उनको रिक्वायरमेंट होगी कि जो उनको एक्सटेंडेड पीरियड मिलेगा उनको तभी रीजनल एरिया में ही रहना पड़ेगा।
ओके, और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स को, जो जिनको ये मिलेगा उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव स्टेप
ये एक तरह से अच्छी बात है विवेक जी, बिकॉज जिस हिसाब से अभी हम रिसेंटली, आपने भी न्यूज में काफी इसके बारे में रिपोर्ट्स दी हैं कि न्यू साउथ वेल्स ने जो रिक्वायरमेंट्स रीजनल एरियाज की खोली है उसमें सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि अगर आप मेनली अगर आप 2 साल वहां पढ़ लेते हैं और रह लेते हैं तो आपकी ऑक्यूपेशन अगर लिस्ट में है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्वालिफाइंग जो है वो क्वालिफिकेशन मीट हो जाती है वीजा 491 के लिए। तो सिर्फ पढ़ाई ही रीजनल एरिया में करने से काफी हद तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाय डिफॉल्ट 491 की एलिजिबिलिटी मीट होने के बाद उनको वीजा मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हो जाएगा कि उनके रीजनल एरियाज के अंदर लोग पढ़ने लग जाएंगे तो वहां पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी बेटर उनकी बूस्ट होगी। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को ये फायदा होगा कि अगर वो उन रीजनल एरियाज में पढ़ते हैं तो उनको नॉट ओनली लंबी डीआर मिलेगी बट उनकी सीडीसीडी 491 वीजा की क्वालिफिकेशन भी काफी हद तक बनती जाएगी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी ये जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए।
चलिए थैंक यू सो मच।